ओम शांति। धरती की खोज करने वाले दो भूवैज्ञानिक जियोलॉजिस्ट किसी एक जंगल में पहुंचते हैं और वहां से सारे दिन भर में 6 बड़े बड़े पत्थर जमा करते हैं, जो वो सोचते हैं कि इन पर कुछ अनुसंधान रिसर्च किया जाए। और जब शाम हो जाती है तो उनका वो हेलीकॉप्टर आता है और वो सभी पत्थर उसमें रखने की कोशिश करते हैं। हेलीकॉप्टर छोटा है, वो पायलट कहता है केवल 4 ही आ सकते हैं, 2 को यहीं छोड़ दो। पर वो साइंटिस्ट, वो जियोलॉजिस्ट कहते हैं, नहीं, इतनी मेहनत से हमने ये पत्थर ढूंढे हैं, सारा दिन लगा दिया ये पत्थर ढूंढने में, और हमको यही छोड़ दे। पिछली बार भी हम आए थे तब ऐसे ही 6 पत्थर यहां से लेके गए थे और वो भी लगभग इसी साइज के थे और तब भी ऐसा ही हेलीकॉप्टर था। तो पायलट तो मना करता है, पर जब ये बात सुनता है कि पिछली बार भी इन्होंने लेके गए थे तो वो मान जाता है, ठीक है। और वो बड़े बड़े 6 पत्थर उस हेलीकॉप्टर में रखे जाते हैं और हेलीकॉप्टर उड़ता है। पर थोड़ी देर उड़ने के बाद ही नीचे आने लगता है और वो पायलट क्रैश लैंडिंग करनी पड़ती है उसको, और थोड़ी देर बाद एक झाड़ पर पहला जीव वैज्ञानिक, दूसरा जियोलॉजिस्ट एक झाड़ पर और पायलट एक झाड़ पर लटकते हुए। पहला जियोलॉजिस्ट कहता है, यह स्थान कुछ देखा हुआ सा लग रहा है। दूसरा कहता है, हां, पिछली बार जब हेलीकॉप्टर में आए थे इसी झाड़ पर लटके थे। इसका अर्थ, पिछली बार भी गिरे थे, पिछली बार भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और अब भी हुआ। जो गलती पिछली बार की थी वो गलती आज फिर कर दी। और इस जीवन में ऐसी गलती जो बार बार हो रही है उसका नाम है देह अभिमान। वो गलती है कि जो हम बार 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 कर रहे हैं। और जब जब व्यक्ति देह अभिमान में आता है कुछ ऐसी भूलें होती है कि तब उसे पता नहीं चलता है, वो बाद में पता चलता है कि ये भूल थी। जब समय व्यर्थ चला गया, जब मुख से व्यर्थ शब्द निकल गए, जब व्यर्थ कर्म हो गए, जब व्यर्थ चलन हो गई, जब किसी आत्मा के चरित्र का हमने जबरदस्ती उस पर वार कर दिया, कुछ पर चिंतन हो गया, कुछ पर दर्शन हो गया, कुछ झरमुई झगमुई हो गई, तब होश आता है कि ये जो कुछ किया, जो कुछ बोला, ये सब देह भान था, देह अभिमान था। तो ये एक ऐसी गलती है जो न मालूम कितनी बार हम रिपीट कर रहे हैं और वही सभी दुखों का कारण भी है। सुबह की साकार मुरली में बाबा ने कहा, वो कहते हैं स्त्रियों का दुख कैसे हो, अरे स्त्रियों का क्या दुख, सारा संसार ही दुखी है, अथाह दुख है, और दुख का एक ही कारण है देह अभिमान। देह अभिमान की ये जो लड़ाई है बड़ी सूक्ष्म है, क्योंकि जो लड़ता है वो कंफ्यूज हो जाता है। ये अंधकार से लड़ाई करने जैसा है। नए नए हथियार, नए नए अस्त्र, नए नए शस्त्र लाए जाते हैं इस अंधेरे को निकालने के लिए, पर अंधेरा कभी हारता ही नहीं। भ्रम होता है जीतने का, क्योंकि अंधेरा तभी हारेगा जब प्रकाश होगा, और प्रकाश है आत्माभिमानी स्थिति। इसलिए व्यक्ति उलझता ही जाता है, बेबूझ पहेली अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, पजल की तरह समझ नहीं पाता है इसको, यह है क्या। तो ये जो देह अभिमान है, इसके क्या रूप है, इसके क्या स्वरूप है, किन किन बातों से बाबा ने इस देह अभिमान की तुलना की है, आज की मुरली और साकार और अव्यक्त मुरलियों के आधार से आज इसी देहभान पर चर्चा करेंगे। ये जो देहभिमान जो बार बार रिपीट हो रहा है, पुनरपि भूल क्या किया जाए जो इससे छूटे, क्योंकि जब जब हम देहभान में आए, देहभिमान में आए, देह अहंकार में आए, तीन शब्दों का बाबा ने प्रयोग किया, एक देहभान, एक देह अभिमान, एक देह अहंकार। क्या इनमें भी कुछ अंतर है? शायद दादी जान की इस पर क्लास करा सकती है। देहभान ये शरीर के होने का भान, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये देहभान। उसके आगे है देह अभिमान, मैं क्या क्या कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और देह अहंकार सबसे ऊंचा, जिसमें अपनी विशेषताओं का बहुत अधिक घमंड है, जहां व्यक्ति अपने आप को ऊंचा समझता है और दूसरों को छोटा समझता है, अपने आप को ज्यादा पवित्र समझता है, दूसरों को कम पवित्र समझता है। जो पुरुषार्थ मैं कर रहा हूं बस वही पुरुषार्थ है, बाकी सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पुरुषार्थ का भी अहंकार कि हम ही बराबर कर रहे हैं सब कुछ, ये देह अहंकार है। तो इस देह अभिमान के ऐसे कुछ रूप है, ऐसी कुछ उपमाएं हैं, ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। ऐसे 21 रूप। सबसे पहला देह अभिमान एलॉय है। एलॉय अर्थात सुबह की साकार मुरली आत्मा में खाद है, इसलिए जेवर भी वैसा ही होगा। यदि आत्मा में खाद पड़ी है, धातु मिश्रित हुए हैं, देह भान का, देह अभिमान का, देह अहंकार का, देह घमंड का, तो क्या करना पड़ेगा इसको निकालने के लिए? जब किसी धातु में कोई दूसरा मिश्रित हो जाता है, तपाते हैं उसको, सोने को तपाया जाता है ताकि वो कुंदन बने, रियल गोल्ड। केवल ज्ञान चिंतन से कुछ भी नहीं होगा। आज सुबह की साकार मुरली ज्ञान को धारण करने में भी मेहनत है, तो योग में भी मेहनत है, दोनों चीजों में मेहनत है। एक जगह तो कहा बाबा ने, बाप समान संपूर्ण ज्ञान को धारण कर लो, खाली कर दो उसको, एवर प्योर बन जाए उसके जैसा। तो सबसे पहला देह अभिमान क्या है? एक खाद है, एक धातु मिश्रण है जो कि इस आत्मा में पड़ा है, और जब तक ये धातु उसमें मिश्रित है, हम जो सोच रहे हैं, हम जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे डिसीजंस है, वो गलत गलत होते जाते हैं। जो मुख से शब्द निकल रहे हैं, वो ऐसे शब्द निकल रहे हैं जो निकलने नहीं चाहिए थे, फिर भी निकल रहे, जिससे किसी के चरित्र का हनन हो रहा है। बॉडी कॉन्शियसनेस इज एन एलॉय। इस एलॉय को, इस खाद को निकालना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने योग के चार्ट को बढ़ाना पड़ेगा। आज सुबह की साकार मुरली, मैं तुमको गुह्य गुह्य बातें बताता हूं, मैं तुमको नई नई बातें बताता हूं, मैं तुमको गुप्त बातें बताता हूं, मैं तुमको सूक्ष्म बातें बताता हूं। अलग अलग जगह अलग अलग चीजें कही है, और योग के लिए कहा कि तुम ब्राह्मणों में से भी सभी का योग एक रस नहीं है। यह बड़ी सूक्ष्म बात है। संसार की आत्माओं का किसी का भी योग बाप से नहीं है, यह बड़ी गुह्य बातें हैं। मैं तुम्हें हल्की फुल्की बातें पहले सुनाई थी, अभी तुमको गहरी गहरी बातें सुनाता हूं। वही ज्ञान नहीं सुनाते रहूंगा, नया नया ज्ञान सुनाता हूं, नई बातें, गुप्त बातें, सूक्ष्म बातें, गहरी बातें, गुह्य गुह्य बातें। एक ही मुरली का अध्ययन करो तो सारा दिन बुद्धि उसी में बिजी रहेगी, फिर व्यर्थ सुनने में नहीं आएगा कौन क्या कर रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है। इन सब से आत्मा उपराम रहेगी, नहीं तो संडे की मुरली क्या है, जंगल, उलझन का जंगल। एक ही मार्ग है जो स्पष्ट है, एक ही मार्ग है जो सहज है, जो सरल है, उस मार्ग को छोड़ा और दूसरे दूसरे रास्तों से चले गए तो कहां पहुंचेंगे, उलझन के जंगल में, जहां कांटे हैं, क्या क्यों कैसे और पुराने संस्कार के कांटे हैं। और बाप की जो जायदाद है फिर वो भूल जाएगी, फिर चिल्लाए कि बाबा बचाओ, बाप कहेंगे तुमने रास्ता क्यों छोड़ दिया। मार्ग सहज है परंतु आकर्षण भी बहुत है। तो सबसे पहली बात, देहभान क्या है, देह अभिमान एलॉय है, इसको तपाना है, बैठना पड़ेगा। योग में चलता फिरता योग दूसरी बात है, पहले बैठ के योग चाहिए। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात जिसका बैठा हुआ योग कम से कम 4 घंटा हो, और 4 घंटा बैठ के योग करना बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। कितनी व्यर्थ बातों से स्वयं को बचा के रखना पड़ेगा, कितना स्वयं के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा तो ये काम हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। पहला, दूसरा, देह अभिमान बंधन है। क्या है बंधन, इसको बंधन के रूप में समझो कि मैं आत्मा बंध गई हूं। और देह अभिमान अर्थात उसके बड़े सूक्ष्म रूप है, रूठना, नाराज होना, अपसेट हो जाना, उदास हो जाना, भयभीत हो जाना, घबराहट हो जाना, सब देहभान के निशानी, सूक्ष्म देह अभिमान। अपेक्षाएं रखना, व्यर्थ की बातें करना, अफवाहें फैलाना, सब देहभान की निशानियां है। तो देहभान क्या है, दूसरा बंधन। और बंधन को काटने के लिए क्या चाहिए, तलवार चाहिए, वैराग्य की तलवार चाहिए। आज की मुरली में तुम्हें शरीर को देखना ही नहीं है। वो लोग कहते तो हैं आत्मा भाई भाई, पर तुमको तो शरीर को देखना ही नहीं है। पर यह है बड़ी मंजिल। अगली लाइन क्या है मुरली में, यह बहुत बड़ी मंजिल है कि शरीर जिसमें दिखे ही ना। यह बंधन है जिसने मुझे बांधा है, और जो बंधन में होता है बहुत दुख में होता है। मुझे कोई भी बंधन स्वीकार नहीं है, अपने मन में रिपीट करना है यह शक्तिशाली संकल्प, मुझे कोई भी बंधन स्वीकार नहीं है, किसी भी आत्मा का बंधन स्वीकार नहीं है। क्यों मैं किसी से एक्सपेक्टेशंस करूं, किसी से अपेक्षाएं करूं, कोई मेरे ध्यान दे, केयर करे, स्तुति करे, प्रशंसा करे। ये भी बंधन है, सूक्ष्म बंधन। तो देह अभिमान बहुत बड़ा बंधन है, और इसके लिए आत्म अभिमान की तपस्या करनी पड़ेगी। आत्मा समझना, आत्मा देखना बहुत बड़ी मंजिल है। है वही पहला पाठ। दादियों के पास ज्ञान का कोई विस्तार नहीं था। गुलजार दादी की क्लासेस सुनो, उसमें एक ही बात बार बार आती है, आत्माभिमानी, स्वयं को जानो, समय को जानो। पर फिर भी कितना पावर है उस वाणी में। क्यों है, क्योंकि खुद तपस्या की है उसमें, कोई भी बाहर की कुछ भी बातें नहीं है दादियों की किसी बातों में, केवल आत्मा की ही बातें, क्योंकि उन्होंने खुद तपस्या की है। तो देह अभिमान बंधन है, मुझे इस बंधन से छूटना है। इसके लिए अभ्यास कौन सा बढ़ाना पड़ेगा? आत्म अभिमान का। तीसरा, देह अभिमान शाप है, आत्मा शापित हुई है, अब इस शाप से मुझे मुक्त करना है। और शाप से मुक्त होने के लिए क्या किया जाता है? तपस्या की जाती है, मंत्र जाप करते हैं, पापों का प्रायश्चित किया जाता है, ज्ञान में आने के बाद हुई हुई सारी गलतियां, ज्ञान में आने के बाद आया हुआ सारा देह अभिमान, ज्ञान में आने के बाद हुए हुए पाप, बहुत भारी हिसाब है, बहुत भारी। आज की मुरली साकार निर्विकारीपना सतयुग में था, ऐसा बनने के लिए बाप कहते हैं सबसे पहले काम को जीतो, वरदान, संपूर्ण पवित्रता, केवल ब्रह्मचर्य नहीं, किसी भी विकार का प्रभाव न हो, यह है संपूर्ण पवित्रता। साकार मुरली, जब रिंचक मात्र भी अपवित्रता नहीं होगी तब उड़ेंगे, अन्यथा नहीं। क्या ऐसी संपूर्णता की स्थिति आई है? रिंचक मात्र भी अपवित्रता नहीं। किसी एक भाई ने अनुभव सुनाया था, गुलजार दादी का ही, कि जहां वो रहते थे एक भाई बार बार गलतियां करता था। तो उस बड़े भाई ने दादी को कहा, दादी आप उसको कुछ बोलना, वो गलती कर रहे हैं। दादी ने कहा ठीक है, बोलती हूं। फिर दादी ने बोला ही नहीं। फिर दूसरी बार फिर कहा कि दादी आप शायद भूल गए, वो जो है ना वो बहुत गलतियां कर रहा है, उसको आप जरूर बोलना कुछ। दादी ने कहा ठीक है, बोलती हूं। ऐसा कई बार कहा पर दादी ने उसको एक बार भी नहीं बोला। फिर उसने बोला ही, दादी आप उसको बोलते क्यों नहीं? दादी ने कहा मैं उसको क्या बोलूं? उसने कहा दादी वो किसी का भी नहीं सुनता। दादी ने कहा अगर किसी का नहीं सुनता तो मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों उसकी उसको गलती सुनाऊं? कैसी अवस्था है, निर्दोष दृष्टि है, ड्रामा पर स्थैर्य एक्यूरेट है। तो ड्रामा देह अभिमान क्या है? शाप, आत्मा शापित हुई है इसलिए गलतियां हो रही है। अब इस शाप से मुक्त होना है तो पश्चाताप करना पड़ेगा, यह हुआ है, बाबा से बोलना पड़ेगा, तब कहीं माफी। बाबा कहते हैं हाफ माफ हो जाएगा, परंतु ड्रामा में माफी होती नहीं है, यह अटल सत्य है ड्रामा का। जो किया है उसका परिणाम तो मिलेगा, फल मिलेगा, चाहे कुछ भी हो। तुम एक गुना ग्लानी करो, तुम्हारी दो गुना ग्लानी होगी। अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, जो कुछ किया है उस सब का फल मिलेगा। उसके बाद में चौथा, देह विमान धूल है। आज सुबह की साकार मुरली, मैल आत्मा पर चढ़ी है देह अभिमान की। यदि इस आत्मा पर धूल बैठी है देह अभिमान की तो क्या करना पड़ेगा? पोछना पड़ेगा, पोछा लगाना पड़ेगा। यदि ये कमरा, ये हॉल कितना स्वच्छ है पर इसकी अगर सफाई ना की जाए, ये सोचकर कि सब खिड़कियां तो बंद है और यहां तो धूल बहुत कम आती है, इसकी सफाई आज नहीं करेंगे। कितनी बार करते हैं इसकी सफाई दिन में? एक बार या दो बार? एक बार। तो इसमें धूल बैठ जाएगी। मन भी ऐसा दर्पण है जिसमें विचारों की धूल बैठती है, इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाओं की धूल बैठती है, आकर्षणों की धूल बैठती है, परचिंतन, परदर्शन, झरमोई, झगमोई की धूल बैठती है। इसको साफ करना पड़ेगा हर दिन। जैसे घर की सफाई दो तीन बार की जाती है, एक दिन में दो बार, कहीं एक बार, उसी तरह इस आत्मा को भी स्वच्छ करना पड़ेगा। देहाभिमान की धूल है इसके ऊपर, तो देहाभिमान क्या है? धूल, मिट्टी है, मैल है, इसको हटाना पड़ेगा। ये सारे बड़े सूक्ष्म कार्य है, और आत्मा की जितनी सूक्ष्म महसूसता होगी तभी ये किए जाएंगे, नहीं तो मैल बैठी भी है और कोई परवाह नहीं है। अगला, देहाभिमान शत्रु है, एनिमी हमारा क्या है? दुश्मन है, और दुश्मन बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। उसके एक रूप नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक देखो तो हर दिन नए नए और हर दिन भूरूप है। कहां से आ जाता है और कैसे आता है पता ही नहीं चलता है। जब जब हम दुखी हुए होंगे जरूर कोई ना कोई देहाभिमान आया, जब जब हम नाराज हुए जरूर कोई देहाभिमान आया, जिस दिन अमृत वेला मिस हुआ जरूर उसके पहले दिन देहाभिमान आया जिसकी सजा मिली अमृत वेला। जिस दिन मुख से ऐसे शब्द निकल गए परचिंतन के जिसका हमको भी नहीं पता सत्य है या सत्य, जरूर अंदर देहाभिमान आया। इसका मतलब अंदर जरूर आत्माभिमान कम हुआ। ये खेल है प्रकाश और अंधकार का, दिन और रात का। शत्रु बहुत शक्तिशाली है, उसकी हर चाल को समझना है, सूक्ष्मता से उसको समझना है, सारे दिन भर कहां कैसे कब वो आता है, कहां से प्रवेश करता है और क्यों आता है। इतना पुरुषार्थ करने के बाद, इतनी चेकिंग करने के बाद, इतने चार्ट लिखने के बाद, इतनी मुरलियां सुनने के बाद, इतनी क्लासेस सुनने के बाद, क्यों आत्मा उड़ नहीं पा रही है? किसने पंख काट दिए हैं? आंतरिक स्थिति बहुत ऊंची हो। कुछ दिन पहले मुरली में था, श्रेष्ठ स्थिति वरदान में था, मेडल है, ब्राह्मण जीवन का मेडल है। बाहर से कौन क्या कर रहा है एक दूसरी बात, पर अंतर से क्या पुरुषार्थ चालू है। सेवाओं में तो सब लगे हुए हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो सेवाएं नहीं कर रहा है, पर उन सेवाओं के अंदर मन की सूक्ष्म स्थिति क्या है। तो देहाभिमान क्या है? शत्रु है, उसकी हर चाल को समझना है और उसे हराना है। उसके बाद में देहाभिमान फागी है, जब मुरलियों में आता है चलते हैं और फागी आ जाती है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है क्या करे। वैसे जब देहाभिमान घेर लेता है विकार अपने आप आ जाता है, आ जाते हैं, दृष्टि धुंधली हो जाती है, निर्णय नहीं कर पाती। इस फागी को मिटाना है। फागी में कैसे सुरक्षा करते स्वयं की? लाइट। आज की मुरली में है जिसने जितना जास्ती ज्ञान धारण किया है क्या करेगा वो? सुबह की साकार मुरली, अभी कितना 12 घंटा हुआ है खाली, वो उतनी ज्यादा सर्विस करेगा। जो जितना ज्यादा ज्ञान धारण करेगा कर्मातीत बनेगा, जो जितना ज्यादा ज्ञान धारण करेगा उच्च पद पाएगा। तीन अलग अलग जगह बातें आई है, ज्यादा ज्ञान धारण करना, ज्यादा ज्ञान उठाना। बाबा ने कहा खाली कर दो उसको, वो खाली होता नहीं, वो दूसरी बात है, पर उसने कहा है मैं खाली होकर साइलेंस में चला जाता हूं फिर ज्ञान टपकना बंद। ज्ञान को धारण करना, ज्ञान को स्वयं में भरना बड़ी साधना है। एक एक पॉइंट लेना मुरली का और उसका चिंतन करना, ये क्यों कहा आज की साकार मुरली? शुरुआत का पहली लाइन शिव भगवान उवाच। जब भगवान उवाच कहा जाता है इसका मतलब शिव भगवान है या परमात्मा है, यहीं पर रुक जाओ। अब आगे मुरली बाद में पढ़ना, पहले तो ये लाइन का रहस्य क्या है, एक ही लाइन में कितने राज छिपे हुए हैं, एक ही बात में कितनी गहराई है। ये होगा तब जब हमारा इंटरेस्ट होगा उसमें, और व्यर्थ से वैराग होगा, व्यर्थ बातों से, व्यर्थ चर्चाओं से इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, इंटरेस्ट है केवल ज्ञान की बातों में। ये कहा, इसको मुझे सोचना है, क्यों कहा, क्या राज है? तो देह अभिमान क्या है? फागी। क्या चाहिए? लाइट। उसके बाद देह अभिमान है ग्रहचारी। जब ग्रहचारी बैठ जाती है तो क्या करते हैं? जब ग्रहचारी किसी पर बैठ गई, राहु या मंगल की दशा चालू है, गलतियां ही गलतियां होती है, नुकसान नुकसान होता है, क्या करना पड़ता है जब ग्रहचारी बैठती है? तब बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, दान करना पड़ता है, मंत्र जाप करना पड़ता है, तीर्थ यात्रा करनी पड़ती है, स्नान करना पड़ता है नदी का, हवन करना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है, होम करना पड़ता है, प्रायश्चित करना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है, जरूर हमसे कुछ हो गया इसलिए ये ग्रहों की दशा ऐसी हो गई। ज्ञान का दान करना, स्नान करना ज्ञान में, नदी में, मंत्र जाप करना, अजपा जाप, जब लगे कि बहुत गलतियां हो रही है, अर्थात सब कुछ छोड़ दो और योग के चार्ट को बढ़ाओ। क्यों हो रहा है? क्योंकि गलतियों का तो एक ही कारण है, देह अभिमान। उत्तर है आत्माभिमान। तो देह अभिमान क्या है? ग्रहचारी। ग्रहचारी बैठ जाती है। अगला देह अभिमान है नरक, हेल। नरक में जो यातना है वो देह अभिमान में यातना है। व्यक्ति चाहता है मुझे सुख मिले, दैहिक सुख प्राप्त करना चाहता है, शरीर का, इस आश से कि सुख मिले, परंतु सुख मिलता है साथ में ढेर सारा दुख। देह अभिमान का हर छोटा सुख साथ में पैकेज लाता है दुख का, फ्रस्ट्रेशन का। इसलिए सोचते हैं उससे रिलीफ हो जाए, परंतु रिलीफ होता नहीं, मुक्ति नहीं होती है, विस्मृति जरूर होती है। लोग सिनेमा क्यों जाते हैं देखने? 3 घंटे के लिए क्या हो जाता है सिनेमा? क्या कर देता है? दुख को भुला देता है, खत्म नहीं करता है, बस विस्मृत कर देता है। वैसे ही विकारों में भी सुख है, क्षणिक। इसलिए सारा संसार डूबा हुआ है काम में, क्योंकि थोड़े देर के लिए दुख विस्मृत हो जाते हैं जीवन के, परंतु जब बाहर आता है दुख वैसे के वैसे ही और एडिशनल हो जाता है, अब जो किया उसका पश्चाताप। इसके लिए विकार सुख तो देते हैं, परंतु बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसके लिए विकारों में जो सुख है बड़ा ही अल्पकाल का सुख है और बड़ा दुख कर देता है। तो देह अभिमान क्या है? नरक है, जीता जागता नरक। इस नरक से हमको स्वर्ग में आना है। स्वर्ग अर्थात सुबह की साकार मुरली, संपूर्ण निर्विकारी पना, एक भी विकार का अंश नहीं, ऐसी आंतरिक स्थिति, ऐसी पवित्रता, ऐसा ब्रह्मचर्य। उसके बाद में देह अभिमान है खुजली, इच। खुजली होती रहती है। अगर खुजली की बीमारी हो तो क्या होता है? यहां खुजली हुई, जब जब खुजली हुई खुजाओ, रुक जाओ, फिर खुजली होती है, खून आने लग गया। आप सोचते हैं अगली बार नहीं खुजाऊंगा, खून आ गया, पर थोड़ी देर के बाद फिर खुजली। खुजली जैसा है देह अभिमान, विकार जो है ना खुजली जैसे, सुख देते हैं, खुजली करो तो सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है, और थोड़ी देर के बाद जब छोड़ दो तो फिर खींचते हैं, एडिक्शन है। एक बार कोई चीज का, विकारों का एडिक्शन हो गया, छूटता नहीं जल्दी, वही अच्छा लगता है। परचिंतन करना खुजली जैसा है, परदर्शन करना खुजली जैसा है, गॉसिप्स करना खुजली जैसा है। आदत पड़ गई कि व्यक्ति ढूंढते रहता है कुछ नई बात मिल जाए, अच्छी सी खबर, टेस्टी, जूसी, स्पाइसी, मसालेदार, किसी ने मैसेज भेजा था, कभी कभी अपनी तारीफ कर लिया करो, क्योंकि निंदा करने वाले तो खाली बैठे हुए हैं दुनिया में, कभी अपनी ही तारीफ खुद कर लिया करो। तो देह अभिमान खुजली जैसा है, और खुजली जब होए तो क्या करना चाहिए, वो इलाज क्या है उसका? एक तो दवाई, या फिर सहन करो उसको। यहां खुजली हो रही है, कुछ भी नहीं करो, देखते रहो बस, कुछ नहीं करना, क्योंकि खुजली करना इलाज नहीं है, उत्तर नहीं है, वो तो और बढ़ाता है। कुछ भी नहीं करो, तटस्थ तितिक्षा सहन करो। इच्छा हो रही है कुछ देखूं, कुछ करूं, तटस्थ रहना, वो चली जाएगी। उसके बाद में देहाभिमान है झटका, एक जर्क, जोर से धक्का। आत्मा स्थिर बैठी है, देह विमान आया कि धक्का लगता है और गिर जाती है, फिर उठने में कितना टाइम लगता है। जब जब गलतियां हुई है और हम गिरे हैं, टाइम वेस्ट हुआ है, संकल्प वेस्ट हुए है, यही करते रहेंगे, जो हमारे साथ है वो आगे निकल जाएंगे, क्योंकि हम गिर गए फिर उठे और वो तब तक आगे पहुंच गए। किसी को दुख हो गया, 2 घंटा रोना में बिता दिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सब ऐसा क्यों करते हैं, दुख हो गया, दुख में 2 घंटे चले गए, टाइम वेस्ट हो गया। दूसरे दिन अवस्था ठीक है, पर वो 2 घंटे तो चले गए, पर चिंतन, पर दर्शन, या झूठ, या दुख, या आंसू, या रूठना, या रूसना, या नाराज होना, या नाराज करना, या लड़ाई करना, या टीवी देखते बैठना, वर्तमान समय सबसे बड़ी माया सारे विश्व में कौन सी है? यूट्यूब। चालू कहां से करते हैं और खत्म कहां होता है? जब भी किसी भी सोशल मीडिया पर जाओ, एक चीज याद रखनी है, एक लक्ष्य के साथ जाना है, लक्ष्य पूरा हुआ वापस आ जाओ, निर्लक्ष्य नहीं जाना है। एमलेस होकर गए तो जैसे वो मुर्दे को पानी कहां से कहां ले जाता है वैसे ले जाएगा। तो देह अभिमान क्या है? झटका। उसके बाद में देह अभिमान एक चाकू, एक कटार की तरह है, जो ज्ञान योग को ही काट देता है, एक चाकू की तरह है। इतना जो वैराग उत्पन्न हुआ था संसार से, कुछ नहीं चाहिए यहां का, बस आज से तो केवल तपस्या करेंगे, यहां हम तपस्या करने आए थे, ये क्या कर रहे हैं, ये करने आए थे, ये तो संसार ही कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ऐसा वो चाकू जैसा है। उसके बाद में देह अभिमान है झूठ। देह अभिमान क्या है? झूठ। आने वाले संडे की मुरली सत्य पर है, आत्मा का सत्य स्वरूप। हम सत्य से जब दूर चले जाते हैं तो झूठ में है, या फिर हम जब झूठ बोल रहे हैं अर्थात हम में देह अभिमान है। सत्य क्या है किसी को कुछ पता नहीं। एडमंड बर्क नाम का एक इंग्लिश हिस्टोरियन था, इतिहासकार, उसने सारा इतिहास लिखा, शुरू से लेकर अब तक का जो जो इतिहास में हुआ, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक, सारा सारा इतिहास लिख रहा था, 30 साल से इतिहास लिख रहा था। इतना संशोधन करना पड़ता है इतिहास की कोई किताब लिखने के लिए, ये फिगर, ये लड़ाई, पानीपत की लड़ाई, वो लड़ाई, वो लड़ाई कब हुई थी, वाटरलू की लड़ाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये वो सब कुछ। और जब एक रात बैठा था, अचानक उसे झगड़े की आवाज सुनाई दी, वो भागा, घर के पीछे एक मर्डर हो गया था, और जब देखा उसने मर्डर हुआ है, एक व्यक्ति के छाती में चाकू, और सारे लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, एकदम सभी चश्मदीद गवाह है, पता है अभी अभी खून हुआ है, और जिसने खून किया वो भाग गया। पर वो जाता है और देखता है, हर एक अपना अपना अलग अलग बातें बता रहा है। कोई कहता है आत्महत्या होगी, कोई कहता है कुछ होगा, कोई कहता है कुछ होगा, हर एक नई नई बातें बता रहा है। वो कहता है जो बात मेरे घर के पीछे हो रही है और मेरे सामने हो रही है और इतने लोग यहां हैं, तो मैं ये जो लिख रहा हूं इतिहास, इसमें कितनी सत्यता है? जो 200 साल पहले हुआ है वो किसको पता है सत्य क्या है? वह घर आता है, सब फाड़ देता है सारा रिसर्च, क्योंकि वो केवल बातें थी, सत्य किसी को कुछ पता ही नहीं। देह अभिमान झूठ है, और जब देह अभिमान है तो मुख से जो निकलेगा वो झूठ ही निकलेगा। उसके बाद में देह अभिमान एक चूहे के जैसा है। बाबा कहता है माया क्या है? चूही क्या करती है? काटती है, फूंक मारती है, काटती है। तो देह अभिमान काटता है, फूंकता है, काटता है, फूंकता है, काटता है, पता ही नहीं चलता कब देह अभिमान आ गया। उसके बाद देह अभिमान सबसे बड़ी लापरवाही है, निग्लिजेंस आत्मा की। जब जब हम देह अभिमान में हैं, अर्थात हमारे जो ऊंचे कर्तव्य है वो हम भूले हुए हैं, ये लापरवाही की अवस्था है, गफलत की अवस्था है, भूले हुए हैं, कुछ पता ही नहीं। ये संसार का सर्वश्रेष्ठ स्थान है मधुबन, और यहां पे बैठकर हमारे कर्तव्य बहुत ऊंचे हो जाते हैं, क्योंकि संसार में तो दुख ही दुख है, और हम भी अगर दुखी है तो हम में और संसार में क्या अंतर। हमारे कर्तव्य बहुत ऊंचे है, ये जागरण चाहिए कि मुझे बहुत महान कर्तव्य करने हैं। और हमारे कर्तव्य आध्यात्मिक है, सूक्ष्म शक्तियों को फैलाना, अपनी पवित्रता से संसार को पावन बनाना, इससे बड़ा और कोई कर्तव्य नहीं है। मुझे ये वाक्य लिख के रखना है अपनी डायरी में, मुझे इस सृष्टि के एक एक कण को पावन बनाना है, दूसरा मुझे इस संसार की एक एक आत्मा को पावन बनाना है। ये बहुत महान कर्तव्य। आत्मा में जागृति आए, उनको इच्छा हो कि ये अपवित्रता मुझे नहीं चाहिए, इसमें गंदगी है, उसके बाद में देह विमान अजगर है, क्या करता है? हप कर लेता है, कच्चा, सारा ज्ञान योग सब खत्म। जब किसी की स्थिति डाउन हो जाती है, बुद्धि में कुछ नहीं रहता है, ना ज्ञान रहता है, ना योग रहता है, ना धारणा है, ना सेवा, कुछ केवल निगेटिविटी भर जाती है। ऐसी भी अवस्था हमने देखी आत्माओं की, कहां जो एक समय बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थी थे, आज सब कुछ खत्म। कहां तो अमृत वेला योग में नियमित, आज गुप्त। कहां तो नुवा शाम का योग में 6 बजे से, आज है ही नहीं, कहां चले गए। कहां तो पहले चाट और कहां जागरण, कहां ज्ञान की चर्चा, ज्ञान की बातें, मुरलियों का चिंतन, आज गाड़ी की कीमत कितनी है, मोबाइल की कीमत कितनी है, कहां घूमने जाना है, आज किचन में क्या बना, इसकी ही चर्चा है, इसका ही चिंतन है। या तो फोन पर लंबी लंबी बातें चल रही है, व्यर्थ की बातें, करने के आए थे और कर क्या रहे, ये करने आए थे हम यहां। मधुबन में किसी भाई ने अपने लिख के रखा है, नाम नहीं बताएंगे, आईने में, हे मूर्ख, आ गया अपना नाम, क्या करने आया था, क्या कर रहे हो, हे मूर्ख, क्या करने आए थे यहां और कर क्या रहे हो, क्या ये करने आए थे, क्या तपस्या करने आए थे, स्वयं की स्थिति ऊंची बनाने आए थे कि नीचे जाने आए थे व्यर्थ में। उसके बाद में देह विमान दलदल है, क्या है दलदल? एक बार उसमें गए तो नीचे नीचे, जैसे कोई बॉल को फेंको सीढ़ी पर, क्या होता है, ऊपर आता है क्या? नीचे 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 नीचे। सुबह ही गलती कर दो एक व्यर्थ की बातें, सारा दिन वैसा ही जाएगा। सुबह ही ज्ञान का चिंतन नहीं किया, सुबह अमृत वेला हो गए, कमरे में जाके सो गए, फिर उठे 6 बजे 6:30 बजे और मुरली में, जो चिंतन का समय था वो नींद में चला गया। अमृत वेले के बाद सोना अर्थात की कमाई चट खलास, वो समय तो श्रेष्ठ चिंतन का है, वो समय प्रकृति के सानिध्य का है, वो समय एक्सरसाइज का है, वो समय व्यायाम का है, वो समय प्राणायाम का है, वो समय शरीर को स्वस्थ रखने का है, आत्मा को चिंतन से स्वस्थ रखने का है। और वो समय अमृत वेला जैसे कि कब 4:45 बजते हैं और जैसे बजे आ जाओ मेरे लाडलो, बिस्तर पुकारता है, त्यज अगर मगर आ जाओ इधर राजयोग की राहों में, बीत चली दुख भरी रात स्वर्णिम प्रभात में लाया हूं, बिस्तर पुकारता है, छोड़ो अभी बहुत हो गया थकान, आज दिन भर रेस्ट नहीं मिलने वाली है, बहुत सेवा है, जाके सो जाओ। और सोते हैं और फिर सीधा 6 बजे उठते हैं और 6 बजे उठने के बाद एकदम फ्रेश लगता है। एक दो आत्मा, एक सीधा 6 बजे उठती है, दूसरी आत्मा अमृत वेला करती है, सोती है, 6 बजे उठती है, दोनों की स्थितियों में ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि उसकी भी दिन वहां से चालू हो रहा है 6 बजे से, ये तो गया विस्मृति में, ये तो समय चिंतन का है, शरीर को स्वस्थ रखने का है। और कोई कोई मोबाइल में लग जाते हैं अमृत वेला होते ही, मैसेजेस, मोती, थॉट, स्लोगन, शुभ विचार भेजने में, जैसे अगर तुमने नहीं भेजे तो अकाल पड़ जाएगा शुभ विचारों का संसार में। हैप्पी अमृत वेला, हैप्पी सद्गुरुवार, हैप्पी सोमवार, कुछ भी, टाइम वेस्ट। उसके बाद में देहाभिमान है, रस्ट, जंक, सुई में क्या लग गई है, जंक, आकर्षण नहीं होगा, परमात्मा का आकर्षण ही नहीं होता है। आज की मुरली में कोई कोई तो बाप को याद ही नहीं करते, क्योंकि आकर्षण ही नहीं होता, क्योंकि इतना कट लगी हुई है, खींच नहीं होती है। नहीं तो आत्मा को खींच हो कि कब परम धाम जाऊं, रात में पानी आ जाए, बाप कब अमृत वेला हो और कब मैं भगवान से मिलन मनाऊं, माउथ वाटरिंग कब हो, कब शरीर को यहां छोड़ दूं और जाऊं ऊपर उस निराकारी लोक में और अशरीरी हो जाऊं। खींच क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि यहां इतनी कट लगी है देह भान की, उसको हटाना है। क्या करते हैं जंक निकालने के लिए, किसमें रखते हैं, केरोसिन में, घासलेट में डालना पड़ेगा, थोड़ा ज्ञान योग के घासलेट में, आत्मा को जबरदस्ती, आत्मा तो चाहती नहीं है, उसकी गर्दन पकड़ के डालना पड़ेगा उसको नीचे। आत्मा तो चिंतन ही नहीं करना चाहती मुरली का, वो कहती है मैं तो सब जानती हूं, मुझे सब पता है, उसके बाद में देहाभिमान है, तूफान, क्या है, तूफान आता है तो ज्ञान योग के जो छोटे छोटे गांव बसाए थे सब उड़ा कर ले चले जाता है। इसके लिए बहुत पक्के बनाने पड़ेंगे ज्ञान योग के गांव, इमारत बहुत शक्तिशाली, कि देहाभिमान का तूफान आए ही ना। उसके बाद में देहाभिमान है चोर, डाकू, थीफ, आता है चुपके से और अनुभव की चोरी कर ले जाता है, सूक्ष्म बाबा के प्यार की चोरी कर ले जाता है और देहधारी का प्यार वहां आ जाता है। भगवान का प्यार ही कम हो गया, क्यों, जब आए थे तो कैसा प्यार था, कैसी लगन थी, क्या करूं और क्या नहीं, मुरली सुनने के बाद पहले कैसे नशा चढ़ता था, कोई दीवार में सर पटक दूं, अभी ऐसा लगता है कब पूरी होगी, क्यों कम हो गया प्यार, क्योंकि चिंतन खो गया है, चिंतन को फिर लाना है वापस, दृढ़ संकल्प को फिर लाना है, संकल्प की आवश्यकता है बस। उसके बाद में 20वां देहाभिमान है हलचल, क्या है देहाभिमान, हलचल है, भयंकर हलचल, रेस्टलेसनेस, बेचैनी होती है देहाभिमान से, देहाभिमान आ गया किसी की ग्लानी कर दी एक घंटा, उसके बाद में योग करो बैठकर, होगा क्या? नहीं होता है। कीमत तो चुकानी पड़ेगी। आत्मा खुद ही की शत्रु बन जाती है, खुद ही का मित्र खुद है, शत्रु भी स्वयं है। इन सब बातों से उपराम किसी एक इंचार्ज बहन के पास एक खत आया, जिसमें चार पेज की कंप्लेंट एक छोटी बहन के बारे में किसी ने भेजी, पर नाम नहीं लिखा अपना। तो वो जो बहन थे जोनल इंचार्ज, उन्होंने इस खत को पढ़ा और कहा इसमें नाम नहीं लिखा है, इसका मतलब झूठ है, ये फाड़ दो। अगर सत्य होता तो सामने आता, डरपोक है इसलिए छुप छुप के कर रहा है। लास्ट देहाभिमान है जहर, वेनम, पॉइजन, विषाक्त कर देता है आत्मा को। जो शुभ भावनाएं हैं, अच्छी भावनाएं हैं, सबके प्रति शुभ संकल्प है, विचार है, दूसरों के प्रति जो रिगार्ड है, सब कुछ खत्म कर देता है। यज्ञ के प्रति जो रिगार्ड है, इस परिवार के प्रति जो रिगार्ड है, निगेटिविटी भर देता है। और जो आत्मा में निगेटिविटी आ गई, वो कहां से योग करेगी अमृत वेला, कहां से उमंग उत्साह आएगा? तो देहाभिमान बहुत बड़ा शत्रु है, एक ऐसी भूल जो हम बार 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 करते जा रहे हैं। और वो अंधकार है, उत्तर है प्रकाश। तो सभी स्थिर होके बैठेंगे और केवल मैं आत्मा हूं इतना ही चिंतन करेंगे। अच्छा, ओम शांति।